हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी स्नेहा झलक के पास आई और बोली, अच्छा अच्छा बेटा, तुम्हें काम करना, जाते वक्त मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, ठीक है? उसके बाद सीधे ऑफिस जाना, मंदिर तो वैसे भी तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा। ये सुनकर झलक ने उन्हें बस घूर कर देखा और वो बोली, लेकिन माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा मंदिर प्रसाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई मंदिर वंदिर नहीं जाने वाली हूँ। इस पर माँ थोड़ा सख्त होते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो बेटा, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो ऊपर वाले की ही तो देन है, अगर तुम उसे ही भूल जाओगी तो कैसे काम चलेगा? देखो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? तुम्हें मंदिर जाना ही होगा और ये प्रसाद चढ़ाकर ही जाना है। ये कहते हुए स्नेहा जी की आंखें भर आई थीं। ये सुनकर झलक ने उनकी ओर देखकर कहा, अब आपको मेरे सामने इस तरह का कोई इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहां प्रसाद चढ़ाऊं तो ठीक है, मैं चढ़ाऊंगी, ओके? ये बोलकर उसने उनके हाथ से प्रसाद उठा लिया और अनामिका के हाथों में थमा दिया। फिर उसने अपनी काली आंखों पर चश्मा चढ़ाया और वहां से बाहर निकल गई। वहीं अनामिका ने स्नेहा जी को देखकर कहा, अरे माँ, आपकी आंखों में इस तरह आंसू नहीं आने चाहिए, और रही बात मंदिर की तो मैं खुद झलक के साथ जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी, ठीक है? आप परेशान मत होइए और प्लीज़ आप आगे से बिल्कुल नहीं रोएंगी, आपको मुझसे वादा करना होगा। अनामिका के प्यार भरे शब्द सुनकर स्नेहा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, सच है, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। एक बेटी मांगी थी लेकिन उसने एक और प्यारी सी बेटी साथ में लौटा दी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। ये कहते हुए उन्होंने अनामिका को ढेर सारा प्यार दिया। तब तक झलक गाड़ी का हॉर्न बजा बजाकर पूरा बंगला सिर पर उठा चुकी थी और अनामिका के बैठते ही उसने गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। उधर आरव गहरी नज़रों से बार बार अपने पिताजी को देख रहा था, मानो आंखों ही आंखों में ये कह रहा हो कि मेरी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अब आपकी ही है। तभी सौरव जी रोहन को लेकर स्कूल के लिए निकल चुके थे, क्योंकि वो खुद ड्राइवर के साथ जाकर उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। पूरी तरह से अब दिग्विजय मल्होत्रा की फैमिली एक परफेक्ट फैमिली नजर आ रही थी और उस सुख संतोष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही देर में ड्राइवर ने गाड़ी मंदिर के सामने रोक दी। झलक ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा, एक काम करो, तुम ही जाकर प्रसाद चढ़ा दो, मैं यहीं गाड़ी में इंतजार कर लेती हूँ। ये सुनकर अनामिका थोड़ा चौंक गई और फिर गहरी सांस लेकर बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम झलक, शायद तुम भूल रही हो कि स्नेहा माँ ने तुम्हें ही ये प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा है। हम दोनों बहनें साथ साथ चढ़ा सकती हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, समझी मेरी बात? अनामिका ने जोर देते हुए कहा, अभी गाड़ी से उतरो और मेरे साथ चलो, जाकर खुद ही ये प्रसाद चढ़ाओ। फिर उसने शांत नजरों से झलक की तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ बचपन जीना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें, सब कुछ साथ साथ करें। ये सच है कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हो, और अपने काम को लेकर भी। भले ही कुछ दिनों से मैं थोड़ा अनमेच्योर बिहेव कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूँ। अब उतर जाओ गाड़ी से और मेरे साथ चलो। अनामिका का ये सख्त लहजा सुनकर झलक एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल वो गाड़ी से उतर गई और उसके हाथ से थाली लेकर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर अनामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे बचपन वाले बिहेव को देखकर तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में लेने लगी हो, लेकिन तुमसे अपनी बात मनवाना मुझे अच्छी तरह आता है। ये कहते हुए अनामिका ने भी अपनी गहरी काली आंखों पर चश्मा चढ़ाया और सिद्ध मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के भीतर जाकर झलक भगवान की मूर्ति, अपने आराध्य की प्रतिमा को इस तरह घूर कर देखने लगी, मानो वो आंखों ही आंखों में उनसे पूछ रही हों कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी में इतना बवाल क्यों भर दिया। फिलहाल पंडित जी को प्रसाद चढ़ाने के बाद झलक बिना हाथ जोड़े वहां से बाहर निकलने लगी। तभी अनामिका ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम, इस तरह बिना भगवान को हाथ जोड़े कैसे जा सकती हो? शायद तुम भूल रही हो कि अगर ऐसे जाओगी तो भगवान को बुरा लग सकता है और वो हमसे नाराज हो सकते हैं। तब झलक ने तीखी नजरों से अनामिका को देखते हुए कहा, अगर उन्हें हमारी नाराजगी से कोई फर्क पड़ता, अगर वाकई इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज होती तो मेरे साथ ये सब कुछ कभी नहीं होता। झलक ने भारी लहजे में कहा, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो तेज कदमों से जाने लगी, लेकिन अनामिका ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और बोली, तुम इस तरह नहीं जा सकती, और झलक, अगर उन्होंने तुमसे बहुत कुछ छीना है तो बहुत कुछ लौटाया भी है। तुम्हें पिताजी मिले, दादाजी मिले, मैं मिली, इतना ही नहीं, तुम्हें वो ताकत, वो पावर, वो पोजीशन मिली है जिसके दम पर तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। और अगर सिद्धार्थ खुराना की शादी की न्यूज़ सुनकर तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचा है तो तुम सिद्धार्थ खुराना से सब कुछ वापस हासिल कर सकती हो। जैसे ही अनामिका ने अचानक सिद्धार्थ का नाम लिया, झलक की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसकी आंखों में उभरते उस गुस्से को देखकर अनामिका डर के मारे एक कदम पीछे हट गई, लेकिन झलक का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तुरंत अनामिका अपनी गलती मानते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाई है, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने का था, तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सुनकर झलक ने बेहद शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, सिद्धार्थ खुराना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस तरह का बिहेवियर उसकी वजह से कर रही हूँ? क्या तुम मुझे पहले से नहीं जानती? मैं वही हूँ जो तुम मुझे उस वक्त जानती थी जब हम पहली बार जहाज पर मिले थे। तुमने मेरा अंदाज देखा था ना, क्या थी मैं, और अब देख रही हूँ मैं क्या बन गई हूँ। जिस पत्थर की मूर्ति की तुम यहाँ पूजा करने आई हो, मैं भी उस पत्थर की मूर्ति से कुछ कम नहीं हूँ। मैं एक चलती फिरती जिंदा लाश हूँ। उस वक्त जब पूरे समाज ने मुझ पर उंगली उठाई, पहले मैंने मनहूस होने का ठप्पा सह लिया, लेकिन ये नाजायज होने का ठप्पा, ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे शरीर से मेरी आत्मा ही निकालकर फेंक दी हो। और तुम्हें लगता है कि जिस इंसान की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैं उसके लिए अपने मन में कोई भावना रखूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नफरत है मुझे सिद्धार्थ खुराना से, इतनी नफरत कि उसकी कोई हद नहीं है। हाँ, ये सच है कि एक वक्त था जब शायद मैं उससे दिल से प्यार करती थी, और ये भी जानती थी कि मेरे जैसी लड़की को ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुझमें वो सो कॉल्ड मैनर्स नहीं है, मुझे तमीज नहीं है, मैं एक नंबर की बेकार इंसान हूँ। लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारी ये गलतफहमी पूरी तरह दूर कर दूंगी कि सिद्धार्थ खुराना के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क पड़ता है। तभी अनामिका झलक को देखकर बोली थी, झलक देखो, मैं मानती हूँ कि तुम जिंदगी से नाराज हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पूजा करो, हमारे आराध्य की पूजा करो। प्लीज, स्नेहा माँ ने बहुत प्यार से तुम्हें ये थाली दी है, तुम अपने हाथों से आराध्य को प्रसाद चढ़ा दो। मत मानो इन्हें, मत पूछो कुछ भी, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए तो तुम ये कर ही सकती हो ना, प्लीज झलक। अनामिका की बात सुनकर झलक ने गहरी सांस ली, बिना किसी इमोशन के जैसे अनामिका ने कहा था उसने पूजा की और प्रसाद चढ़ाया, और वहां से उतरकर सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहीं अनामिका ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा,
माफ कीजिएगा भगवान जी, आप तो जानते ही है ना, झलक को अभी समय लगेगा, उसने आज भले ही बेमन से आपकी पूजा की है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दिल से पहले की तरह आपकी पूजा करेगी। इसके बाद वो जल्दी से बाहर आई और झलक की गाड़ी में बैठते हुए चहक कर बोली, थैंक यू सो मच झलक, तुमने मेरी बात मानी, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ज्वेलरी देखने भी चलना होगा, क्योंकि मैंने कल न्यूज़पेपर में देखा था कि बहुत अच्छा ज्वेलरी कलेक्शन आया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? अभी फटाफट ऑफिस चलते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। झलक ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने सीधा गाड़ी स्टार्ट की और फास्ट ड्राइव करते हुए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सामने गाड़ी आकर रोक दी। अनामिका फटाफट गाड़ी से उतरी, झलक भी उसके साथ उतरी, और जैसे ही दोनों ने अंदर एंट्री की, सभी स्टाफ, सिक्योरिटी और वर्कर्स ने उनके सामने सिर झुकाकर उनका वेलकम किया। शालिनी भी वहां मौजूद थी, क्योंकि वो झलक और अनामिका को अब अच्छी तरह समझ चुकी थी, वो जान चुकी थी कि वे लोग ही असली मालिक हैं। कहीं ना कहीं शालिनी के मन में ये डर भी था कि झलक ने उसे अब तक नौकरी से नहीं निकाला, वरना उसकी जो झूठी छवि बनी हुई थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती और फिर उसकी कोई पूछ भी नहीं रहती। फिलहाल अब शालिनी झलक के अंदर छिपे गुस्से से पूरी तरह बिफर चुकी थी, लेकिन झलक के सामने वो कुछ भी कह नहीं सकती थी, आखिरकार उसे झलक से अपना मतलब जो निकालना था। बिना देर किए झलक सीधा अपने केबिन में गई और अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठ गई, आज के सारी डिटेल्स, मीटिंग्स और बाकी चीज़ें चेक करने लगी। उसे ऑफिस में बैठे अभी केवल 10-15 मिनट ही हुए थे कि तभी आदित्य राणा सीधा झलक के केबिन के पास आ गया। आदित्य को देखकर शालिनी का दिल किया कि वो जाकर उससे बात करे, जिस तरह से पहले वो उसे मान सम्मान देता था, उससे बातें करता था, उसी तरह वो एक बार फिर उसके करीब जाना चाहती थी। लेकिन इस बार आदित्य ने शालिनी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उसे साइड करते हुए सीधा झलक के केबिन के पास चला गया। ये देखकर शालिनी अंदर से जल कर रह गई और मन ही मन गुस्से से बुदबुदाई, ये सब कुछ झलक की वजह से हुआ है, अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आदित्य राणा हमेशा के लिए मेरा होता, लेकिन झलक ने आकर मेरी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके गुस्से और नफरत की इस वक्त कोई सीमा नहीं थी। फिलहाल बिना देर किए आदित्य ने झलक के केबिन का दरवाजा खटखटाया। झलक ने बिना दरवाजे की ओर देखे ठंडे लहजे में कहा, कम इनसाइड। आदित्य अंदर आकर झलक के ठीक सामने बैठ गया। उसे देखकर झलक ने बस पेपरवाही से उसकी ओर देखा और बोली, मिस्टर राणा, जिस तरह गुस्से में आप गए थे, मुझे लगा था कि शायद आप वापस आएंगे ही नहीं, फिर आज इस तरह लौटने की क्या वजह है? ये सुनकर आदित्य ने झलक को गुस्से से देखा और चबा चबा कर बोला, मिस मल्होत्रा, शायद आप भूल रही हैं कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, अगर इस वक्त आपने या मैंने अपने कदम पीछे लिए तो नुकसान हमारी दोनों कंपनियों को होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी पर्सनल ईगो को साइड में रखकर बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, समझिए आप? आदित्य के इस पूरे एटीट्यूड भरे जवाब पर झलक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोली, अरे वाकई, दैट्स ग्रेट मिस्टर राणा, आपकी ये बात मुझे पूरी तरह पसंद आई। सच कहूँ तो अगर आप यहाँ आकर बेकार की हीरोगिरी करते, नाटक करते कि आपको औरतों की बहुत परवाह है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको अभी इसी वक्त आपको बाहर निकलवा देती। लेकिन आपने जिस तरह से प्रोफेशनल बात की है, वाकई इम्प्रेसिव, मुझे अच्छा लगा। और हाँ, मैं आपकी कंपनी के साथ काम जरूर करूंगी। एक तो आपका ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया और दूसरा मेरे दादाजी भी यही चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करूं। तभी आदित्य ने गंभीर लहजे में कहा, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि जितना बड़ा हमारा ये प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताना होगा।